तो आप जानना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म की सार सत्स्वरूप की तलाश है, महाराज जी ने ये कहा है। देखिए दो शब्द हैं, एक स्वरूप एक सत्स्वरूप। स्वरूप तो बहुत सारे हैं, सब जानते हैं, लेकिन सत्स्वरूप उसे कहते हैं जो कि सारी सृष्टि में एक ही सत्ता है, जिसके बिना पूरे ब्रह्मांड में किसी का अस्तित्व ही नहीं है। उसके बिना ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए उसको सत्ता करके कहा जाता है या सत करके कहा जाता है। वैसे यदि हम विचार करें कि जब सारी सृष्टि में द्वैत है ही नहीं, एक ही सत्ता है, तो हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यदि एक्सेप्ट करेगा तो इस रूप में वो एक डेड चीज होगी। फिर तो सारी सृष्टि में एक ही सत्ता है तो डेड चीज होगी कोई। हमारी दृष्टि में तो ये द्वैत संसारी, इसमें मौज मस्ती भी है, इसमें सुख दुख भी हैं, जीवन भी है, सब कुछ है। परंतु यदि आप सबसे पहले अपना विश्लेषण करें तो इस निर्णय पर आप आसानी से पहुंच जाएंगे कि महाराज जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सार सत्स्वरूप की तलाश है, या यूं कह लें कि आत्मा की खोज है या ईश्वर की प्राप्ति है, वो सब एक ही बात है। हम अपने बारे में बड़ा ही कंफ्यूज्ड हैं, अपने बारे में हमारा सही सही निर्णय नहीं है। हालांकि हमने सत्संग बहुत सुने होंगे, पढ़ाई लिखाई भी की होगी, लेकिन हमारे सोचने का तरीका ऐसा है कि कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं, कुछ का कुछ सोच लेते हैं। सत्पुरुष जिस वर्ड से जो चीज़ समझाना चाह रहा है वो नहीं समझते हैं। तो हमारे जो इनहेरेंट कंसेप्ट हैं मन में बैठे हुए, जो संकल्प हमने बना रखे हैं अपने, उसी संकल्प के अनुसार हम सोचना और शुरू कर देते हैं और निर्णय लेना भी शुरू कर देते हैं। तो हमारी बुद्धि एक तरह से कंडीशनड बुद्धि है, अनकंडीशनड नहीं है। तो यदि आप सही सोचें तो महाराज जी भी और गीता भी और सारे शास्त्र दो चीजों को बड़ा क्लियर कर रहे हैं। एक देह है और एक देह का मालिक जीव है, यानी मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी देह को मतलब कि अपने अधीन समझता हूं या मैं अपने आप को मालिक समझता हूं। लेकिन प्रैक्टिकल सत्य यह है कि मैं अपनी देह को अपनी वस्तु नहीं समझता हूं, मैं अपनी देह को अपना स्वरूप समझता हूं। अब विचार करिए, जहां आपने अपनी देह को अपना स्वरूप समझ लिया कि मैं अपना नाम बार बार लेता हूं मैं, और शायद 24 घंटे में एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आता, सत्संगी होने के बाद भी, कि मैं देह नहीं हूं, ये ख्याल नहीं आता मेरा। इसीलिए सारा जो आध्यात्मिक विद्या है वो मेरी उलट पलट हो जाती, मेरी समझ ही नहीं आती, कुछ कुछ का कुछ समझता रहता हूं, कुछ का कुछ करता रहता हूं, क्लैरिटी नहीं होती उसमें बिल्कुल। तो इसीलिए गीता का ज्ञान भी जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण ने कह दिया कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण करता है। और महाराज जी से जब पूछा गया, महाराज जी क्या इस देह के खत्म होने पर जो नई देह प्राप्त होती है, इन दोनों में कोई टाइम डिफरेंस होता है, तब महाराज जी ने कहा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। और उन्होंने जोंक का एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार जोंक अपना मुंह जब जमा लेती है तब पूंछ उठाती है वो, उसी प्रकार जब जीव नई देह अपनी तैयार कर लेता है, या यूं कहिए जीव के संकल्प के अनुसार, जीव के संस्कार के अनुसार, जीव के प्रारब्ध के अनुसार जब उसकी नई देह तैयार हो जाती है, तब जीव प्राणी देह का त्याग करता है। इसका मतलब जीव की डेथ है ही नहीं। लेकिन हम सब कुछ पढ़ने सुनने के बाद भी कितने बेचैन रहते हैं, कितने भयभीत रहते हैं, मर जाऊंगा, और फिर कहते हैं कि मुझको सारे शास्त्र समझ में आते, मैं सब जानता हूं। चिंतन की यह हालत है कि गुरु की ही बात पर हम चिंतन नहीं करते। महाजी की इस बात से यह सिद्ध नहीं हो रहा है क्या कि मौत नहीं है? तो मुझको जो मौत से भय है वो क्यों है? इसी वास्ते है कि मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं। प्रैक्टिकल सत्य मेरे बारे में यह है, चाहे मैं कितना ही समझदार व्यक्ति क्यों ना हूं। तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है इन महाजी की बात से और गीता की बात से ही कि मैं जीव हूं जिसकी मृत्यु नहीं है। इसीलिए सारे संस्कार जो मेरे मन में होते हैं, मन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और जो चीज सूक्ष्म है उसकी भी मृत्यु नहीं होती। जैसे देह की मृत्यु होती है तो मन की मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं होती। तो आपका मन भी बच जाता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर भी बच जाता है, और आप भी बच जाते हो। सारी प्रॉपर्टी आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर आपकी सुरक्षित है, और जो देह करके प्रॉपर्टी है वो सब आपकी निरर्थक है, उसका कोई अर्थ ही कुछ नहीं। तो इसीलिए जो कुछ भी मेरा है संसार के अंदर, और जो कुछ भी मेरी देह है जो हर समय मेरे पास है, इन दोनों का केवल एक ही सदुपयोग है कि मैं इस रहस्य को जान लूं कि मैं कौन हूं, और किसी पर्पज के लिए आपको मानव देह दी ही नहीं गई। बाकी सारे कार्य तो ईश्वर आपसे आपका गला पकड़कर करा लेगा, वो तो करा लेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है और ईश्वर इस देह का करता है, जीव नहीं है। जीव को वहम है केवल कि मैं करता हूं, ये भ्रम है। महाजी कहते हैं प्रेमी, ये भ्रम है जीव, क्योंकि सारे कर्म देह से ही होते हैं, और मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं इसलिए मेरे निश्चय में यह बना रहता है कि मैं कर रहा हूं, ये स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए सारा अध्यात्म मार्ग क्या है? जीव को अपने होश में आना है, और जैसे जैसे ये स्वार्थ कर्म करता है, कहता है मैं धर्म पालन कर रहा हूं, परिवार का पालन कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, उसको होश ही नहीं है, तेरा कर्तव्य तो कोई और है, तेरा कर्तव्य तो कोई और है। सत्पुरुष ये कह रहे हैं तू स्वार्थ कर्म भी करता है, वो कर्तव्य भावना से कर। कर्तव्य भावना का मतलब होता है कि मैं जो मोह भावना से करता हूं कि मेरा अधिकार है इन पर, ये मेरे हैं, तो अधिकार भाव से तू करता है ना कर्म, यही तेरा बंधन बन जाता है। तुझको पता ही नहीं है ये जो तेरा अधिकार भाव है ये तुझको पांच विकार में फंसा देता है और तीन गुणों में फंसा देता है। तो कर्तव्य बोध से कर्म करने की बात कही आती है, जब आप कर्तव्य बोध से करोगे तो उतना ही करने की कोशिश करोगे जितनी की आवश्यकता है, और जब मोह भाव से करोगे, अच्छा दुनिया का ये चलन चल रहा है, मैंने बच्चे को ये तो बनाने ही बनाना है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, उसके भाग में होगा तभी तू बना पाएगा, यदि तू बना पाता है तो ईश्वर ने तेरे द्वारा उसकी रचना की है, उसके भाग्य की, लेकिन तूने नहीं करी रचना, वो ईश्वर ने करके भेजी है। तेरा अहंकार हो गया, देखो मैंने कितने ढंग से पढ़ाया था बच्चे को और कैसा भविष्य बना दिया मैंने, तू मारा गया अज्ञानता के कारण, भ्रम के कारण तू मारा गया। तू लोगों से यही कहता घूमता है, देखो भैया तुम भी ऐसे करना। तो इसीलिए जब तक आप अपने बारे में ठीक ठीक नहीं समझोगे तब तक अध्यात्म विद्या आपकी समझ में नहीं आने वाली। कुछ का कुछ समझते रहोगे और ये अहंकार पालोगे मैं सब जानता हूं। तो इसीलिए वाणी महाराज जी कह रही है कि प्रभु के सिमरन कारणे ये दुर्लभ जीवन पाए। तो हम मनुष्य जन्म की सफलता अपने जो कुछ कर्तव्य उनको पूर्ण करने में समझते हैं, हमारे कर्तव्य सारे पूर्ण हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया। और महाराज जी की वाणी क्या करिए, मानुष्य जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित आए। तेरे चित में प्रभु बस जाए, संसार निकल जाए, तेरे चित से संसार निकल जाए, प्रभु बस जाए, इसमें हमारा जीवन की सफलता है। तो इसीलिए ये मसला बारीक है। बिना शास्त्रों के गहरे मनन के आप बार बार गलतियां करोगे और वहम ये पालोगे मैं समझ रहा हूं। जब किसी विवेकवान व्यक्ति के सामने पहुंचोगे वो कहेगा ये तो बड़ा अंधेरे में है, अभी तो इसको अहंकार ही अहंकार है कि मैं सब जानता हूं, शब्द पढ़ रखे हैं इसने, उसके मर्म को नहीं समझ रहा है। तो मैं जीव हूं और मैं परेशान क्यों हो रहा हूं मुझे यह भी पता नहीं। समता विलास 10 बार पढ़ने के बाद भी मैं ये नहीं एनालाइज कर पा रहा हूं कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूं, मेरे अंदर बेचैनी क्यों बनी हुई है। मैं क्या कहता हूं, देखो बीबी बीबी के कारण बेचैन हूं ये गलती करती है, बेटे के कारण बेचैन हूं ये गलती करता है, दुनिया वाले मुझे धोखा देता हूं इसलिए बेचैन हूं मैं, हर चीज उसकी बेचैनी की बाहर है। और जबकि सत्पुरुष कहते हैं हर चीज बेचैनी की तेरे मन के अंदर मौजूद है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। संसार में कोई वस्तु है ही नहीं तो जो तुझको धैर्य दे सके, फिर क्यों संसार को दोष दे रहा है, होश है मैं इस बात का, हम यही तो रात दिन करते हैं। मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर, तेरे मन की सारी बेचैनी केवल गोविंद का नाम हरण कर सकता है और दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं और तू रात दिन बेचैन है। तो इसलिए गुरु इस बेचैनी से मुक्ति दिलाने के लिए आया है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। इस मुसीबत रूपी जगत से या बेचैनी रूपी जगत से छुटकारा देने के लिए प्रभु गुरु रूप में तेरे सामने आए हैं। अब तू उनकी बात को सीखने को ही तैयार नहीं है, मोटी मोटी बातें करता है कि मैं तो साहब खाना समय पे खा लेता हूँ, सूक्ष्म खा लेता हूँ, मैं समय पे सो लेता हूँ, समय पे सिमरन कर लेता हूँ, ईमानदारी से व्यवहार करता हूँ, मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये तो बड़ी ही प्रारंभिक बातें, ये तो धर्म के मार्ग पर चलने की ABCD है, तू इसी को सब कुछ समझे बैठा हुआ है। तो ये विवेक बड़ी गहरी चीज़ है, ये इतनी सरल नहीं है जो हमने एक सब सुन रखा है या कहीं परिभाषा पढ़ी कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जो ये जानता है उसको विवेकी कहते हैं, बस हो गई परिभाषा। जब समझोगे प्रैक्टिकल विवेक क्या है तो आपको पता लगा 50 साल तो निकल गया, हाफ सेंचुरी आपकी जीवन की ऐसे ही निकल जाएगी इस विवेक को समझने में। वो भी जब करोगे ईमानदारी से तब समझ में आएगी, नहीं तो कभी कभी समझ में नहीं आने वाला। तो इसीलिए धर्म पर चलने वाले लोग भी उनकी हालत वही रहती है जो आम संसारियों की होती है, उनसे कुछ बेटर होते हैं, कुछ पाप कम करते हैं, कुछ लोगों को तकलीफें कम देते हैं, बस ये तो अंतर आ जाता है लेकिन समझ नहीं आती। इसीलिए पूरा जन्म आपको गुरु की बातें समझने में लगाना ही पड़ता है, कोई रास्ता ही नहीं। तो विचार करो कि मैं सारी जिंदगी संसार को मुसीबत समझता रहा, संसार को बंधन रूप समझता रहा, लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं सारे बंधन सारा सब कुछ तेरी बेचैनी के कारण तेरे ही मन के अंदर मौजूद है। इसीलिए वाणी कह रही है सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। ये कह रही वाणी ना, सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। तेरे अपने मन का खेल है ये सारा जगत जो तेरे चारों तरफ इकट्ठा हुआ है। अब तू जगत का इलाज करेगा या अपना इलाज करेगा? तू जगत को ठीक करने में लगा हुआ है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो हर मामले में जब तू बारीकी से सोचेगा तू भ्रमित है। बुद्धिमान होने के बाद भी तुझे यही पता लगेगा कि मैं कितना बुद्धिमान समझता था और कितना भ्रमित हूं मैं। जब जब भी विवेक आएगा तुझे यही समझ आएगा कि भ्रमित तो मैं ही हूं। तो अब विचार करो अंदर आकर कि मैं जीव हूं और मन ही मेरे लिए बंधन है, मन ही मेरे लिए मुसीबत है, मन ही मेरे लिए दुख का कारण है। तो अब इस मन का इलाज कैसे होगा? तो अब बताइए, गुरु कह रहा है, आपको सिखा रहा है कि भाई तेरे मन में क्या मुसीबतें पल रही हैं, उसका वो एनालिसिस दे रहे हैं आपको कि तेरी देह पांच तत्व से बनी है, संसार पांच तत्व से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पांच तत्वों के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब तू देह को अपना स्वरूप समझकर जी रहा है तो पांच विकार तेरे अंदर हमेशा पल रहे हैं, उनका पोषण हो रहा है। तू कितना भी बुद्धिमान हो जा, इन पांच विकार के अंदर ही तेरा जीवन बीतेगा। यदि तू अच्छा आदमी बन गया तब भी, तो जीवन मेरा विकारी है लेकिन मैं कहता हूं मैं बड़ा अच्छा आदमी। जो प्राकृतिक जीवन जी रहा है वो पांच विकार के अंतर्गत उसकी सारी इच्छाएं आ जाती हैं, इससे हटके कोई इच्छा हो ही नहीं सकती इसके अंदर। तो जो देह करके जीवन है वो आपका पांच विकार से युक्त जीवन है, इसीलिए हर चीज आपको बेचैन करती है, कभी भी आपको चैन नहीं मिलता। तुलनात्मक दृष्टि से आप चैन में हो सकते हो, वो कंपेरेटिव स्टडी है आपकी, लेकिन यदि आप अपने बारे में ठीक सोचोगे तब आपकी वही स्थिति है जो समता विलास कह रही है, जो सारे शास्त्र कह रहे हैं। और जो आपके अंदर कर्म करने की इच्छा है, स्वाभाविक होती है ना कर्म करने की इच्छा, महाराज कहते हैं जिसको कर्तापन, जीव का स्वरूप ही कर्तापन है। कर्तापन के कारण जो है उसके अंदर कर्म की वासना उठती है। अब कोई भी कर्म करते हो उसका सिद्धांत यह है कि वो तीन गुणों से युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। आपके सारे कर्म इन तीन गुणों के अंदर कैटेगराइज किए गए, इनका मिश्रण होता है, एब्सोल्युटली कोई नहीं होता, इन तीनों का मिश्रण होता है। तो आप खुद ही देखो, कभी साधना में बड़ी प्रसन्नता होगी, कभी ऐसा लगेगा बड़ी सुस्ती आ रही है, उस समय तमोगुण सवार है आपको आपके अंदर। तो गुणों का परिवर्तन आपके अंदर निरंतर होता रहता है, सारी प्रकृति में गुणों का परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए उसका प्रभाव आपके कर्म पर भी पड़ता है, आपकी सोच पर भी पड़ता है, आपके मन पर भी पड़ता है। तो सारे कर्म आपके तीन गुणों से युक्त हैं और सारी इच्छाएं आपकी पांच विकार से युक्त हैं। तो इसमें आप चैन चाह रहे हो, इसमें बुद्धिमान बनना चाह रहे हो, क्या बुद्धिमान बनोगे आप? क्या बुद्धिमान बनोगे? विचार करते देखो, तीन गुणों और पांच विकारों के अंदर कोई आती व्यक्ति का मैं बुद्धिमान हूं, क्या बुद्धिमान बनेगा? तो इसीलिए जीव जब तक ये नहीं समझता कि पूरा का पूरा मेरा जीवन ये दोषपूर्ण है, ये बेचैनी को लिए हुए है, इससे कभी भी छुटकारा संसार की कोई भी चीज मुझको दिला ही नहीं सकती, दुनिया की बेस्ट कंडीशंस मुझको दे दिया जीने के लिए, तब भी मैं बेचैनी में ही जीऊंगा। इस राज को मैं भले ही आज ना समझूं लेकिन सत्पुरुष इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो निर्णय दे रहे हैं कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, निर्णय है ना उनका, हमारी समझ में कहाँ आता है। हम तो ये कहते हैं राजा बहुत सुखी है, मैं दुखी हूँ, मेरी कोई बात नहीं मानता, राजा की बात सब मान लेते। लेकिन राजा से पूछो, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, बॉर्डर पे 3 देश हैं मेरे, वो हमले करते रहते हैं मेरे ऊपर, मुझे रात दिन अलर्ट रहना पड़ता है, और इतने एम्प्लाइज हैं इनकी भी चौकसी करनी पड़ती है मुझे, कहीं कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, कहीं कोई जासूसी तो नहीं कर रहा है। अब देखो ना राजा के दृष्टिकोण सोचो, तो इतने टेंशन हैं आप कहोगे अरे मैं तो बड़े आराम में हूँ, फिर कहोगे मुझे राजा तो कभी नहीं बनना। तो सही रूप में राजा के बारे में सोचोगे, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तब आप घबरा जाओगे, क्योंकि भैया मैं क्लर्क ही अच्छा, राजा मैंने नहीं बनना। तो दूसरे को देखकर हम भ्रमित हो रहे हैं, यहां भी भ्रमित हो रहे हैं, अपने बारे में पता नहीं है, दूसरे के बारे में भ्रमित हो रहे हैं। तो इसीलिए जब आप शास्त्र के अनुसार सोचना शुरू करते हो, और शास्त्र के अनुसार कब सोचते हो, जब गुरु पर आपका पूर्ण यकीन होता है कि मैं संसार में मुसीबत में जी रहा हूं, अब गुरु मुझको इस मुसीबत से बचाएगा, और गुरु को आप पहले ही ये मान लेते हो या शास्त्र के द्वारा जान लेते हो कि ये ईश्वर का अवतार है, या यूं कह लो कि ये स्वयं ईश्वर ही है, इसलिए ये मिसगाइड मुझे नहीं करेगा। इसकी बात हो सकता है मेरी 10 साल भी समझ में ना आए, लेकिन आपका दिल ये नहीं कहेगा कि गुरु बहका रहा है मुझे, ये कहेगा कि गुरु बात तो ठीक कह रहा है ना, मैं समझने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, और मेरी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होगी ना, इसलिए जो प्रोग्राम बताता है उस पर चलने की ईमानदारी से मैं हिम्मत करता हूँ, चलता हूँ उस पर। तब मेरी बुद्धि में धीरे धीरे ये मोह का जो आवरण चढ़ा हुआ है ये कमज़ोर पड़ता है, समझिए, बुद्धि मेरी जो है वो, जिसको महाजी कहते हैं प्रेमी, इस 5 नियम का जो पालन करता है उसकी बुद्धि में बल आ जाता है। तो बल किसी को हराने के लिए, किसी को लड़ने के लिए नहीं आता, बल इसी आता है कि गुरु की बातें ठीक ठीक समझने के बारे में मेरी बुद्धि में बल आ जाता है, कैपेसिटी आ जाती है शास्त्रों के मर्म को समझने की। तब आपको ये बात समझ आती है और याद रहती है कि मैं जीव हूं जो देह के बंधन में हूं और मन के बंधन में हूं। तो बंधन मेरे बाहर नहीं है, मेरा ही मन, मेरा ही तन, इन दो के बंधन में मैं हूं। ये बात तब समझ में आती है, और जब समझ में आती है फिर आप प्रोग्राम बनाते हो इस मन और तन के बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं। अब गुरु कहता है अब वक्त आया अब इसको समझाने का सही सही। तब गुरु कहता है प्रेमी ये गुरु जो बाहर तुझे दिखाई पड़ रहा है ये तेरा गुरु नहीं है, जो सही गुरु है, जो असली गुरु है, वो तेरी देह के अंदर मौजूद है। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उगार। गुरु साफ साफ कह रहा है। अब शिष्य सोचता है अच्छा हम तो गुरु बाहर समझ रहे थे, गुरु तो अंदर है, अब वो बाहर आके आपको नहीं बताता तो आप कैसे मानते गुरु अंदर होता है। आपने पूर्ण गुरु धारण किया तब ये बात वो कह रहा है। तब महर्षि रमण की बात भी समझ में आती है जब वो कहते हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। जब दोनों गुरुओं की बात हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तब बात समझ में आती है, सोचने को मजबूर हो जाते हैं ये कह क्या रहे हैं। हम तो सोच रहे थे एक पहले गुरु हुए थे, एक वो हुए थे, एक ये हुए थे, एक मेरे गुरु हैं, ऐसे सोचते ना। लेकिन जब गुरु की असली बात समझ में आती है तो वो कहते हैं कि गुरु तो अंतर्यामी है और वो परमेश्वर है। इसका मतलब सारी दुनिया में एक ही गुरु है, इसका नाम है परमेश्वर, और जो बाहर प्रकट होता है उसको परमेश्वर का अवतार कह देते हैं, कहीं उसको पिता का पुत्र कह देते हैं जैसे ईसा मसीह, कहीं उसको मित्र कह देते हैं जैसे मोहम्मद साहब, तो कहीं कुछ कह देते हैं कहीं कुछ कह देते हैं, लेकिन बात एक ही है कि जो परमेश्वर है वो अंतर्यामी है और वो निराकार सत्ता है, वो साकार रूप में केवल मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट होती है, नहीं तो हमें कौन बताएगा, हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर है। मैं जीव हूं, मुझको जो संसार का बंधन नहीं, मन और देह का बंधन है, कौन बताएगा, किस पे विश्वास करेंगे, ये तो सारी हवाई बातें हो जाएंगी। इसीलिए तब मैं गंभीरता से इन शब्दों के पर सोचना शुरू करता हूं। तब धीरे धीरे मेरी समझ में आता है, जब सिमरन करता हूं कि अरे वास्तव में सिमरन करने बैठा हूं, अब दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे परेशान नहीं कर रहा है, शांति से बैठा हूं, अब कौन परेशान कर रहा है? तब पता लगता है मेरा मन ही परेशान कर रहा है। और मन क्यों परेशान कर रहा है? कहते हो ना मन बड़ा बड़ा बेचैन है, मन मेरा शांति चाहता है। अब मन को शांति दी गई है, और सिमरन तो शांति का वक्त है ना, अब तो मन के लिए कोई काम नहीं बचा बेचैनी का, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी सिमरन के वक्त होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मन के अंदर जितने भी संकल्प उठ रहे हैं वो तेरे अटैचमेंट के कारण उठ रहे हैं, तेरे मोह के कारण उठ रहे हैं। तो ये होश है इस बात का, क्योंकि तू अपने आप को अभी भी मन और तन के साथ एक करके देख रहा है। तो ये होश कह तो रहा तो मन बेचैन है, लेकिन वास्तव में तू बेचैन है। और इन निरर्थक चीजों के कारण, तो इसीलिए जब तुझको ये समझ आती है बात कि महाराज ये कह रहे हैं कि प्रेमी तेरे घर को आग भी लग जाए ना तो तूने सिमरन से नहीं उठना। डॉक्टर भीमसेन जी बोले महाराज जी से बरेली में, महाराज जी कई बार पेशेंट आ जाता है, इमरजेंसी होती है, उसकी जान पे बनाई होती है, उठना पड़ जाता है। तब महाराज जी क्या कहते हैं, देखो ओ प्रेमी तू उसको बचाने वाला कौन होता है? उसके भाग में यदि जीवन है ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देगा, तूने सिमरन से नहीं उठना। अब ये बात तो ईश्वर ही कह सकता है, ये बात तो ईश्वर ही कह सकता है। मैं आपसे ये बात करूंगा आप मानोगे? कभी 100 जन्म नहीं मानोगे आप। शिष्य को पता है ना ये ईश्वर है, ये सर्वसमर्थ है, इसलिए उसकी बात मान लेता है कि गुरु बनाया ना उसने उसको। तो इसका मतलब तो सीधा सा निकल रहा है कि कारणकर्ता तो परमेश्वर है। मैं तो ये गलती से समझ रहा हूं कि मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये बचेगा ही नहीं, मर जाएगा ही, तो मेरे कारण मर जाएगा, ये मेरी गलत फहमी है। पूरी प्रकृति ईश्वर के अधीन है। अरे साइंटिस्टों को वहम होगा कि मैं देखो इतनी रिसर्च करी तो इतने लोग जिंदा हैं तो मर गए होते, ये दवाई नहीं मिलती इनको, साइंटिस्ट तो ये सोचता होगा। लेकिन साइंटिस्ट कभी सोचता है कि सूरज के ऊपर मेरा क्या कंट्रोल है कोई? ये सूर्य ना हो तो सारी प्रकृति बचेगी ही? चंद्रमा ना हो तो प्रकृति बचेगी क्या? ये वायु ना हो तो प्रकृति बचेगी क्या? किस मनुष्य का रोल है इसके अंदर? धरती पर पानी क्या मैंने बनाया? तो अपने जरा से अहंकार में पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल जो सत्ता कर रही है उसको भूल जाते, ईश्वर है ही नहीं। तो हम संसार में अच्छे कर्म कर करके अहंकारी बन जाते हैं, हमको होश ही नहीं। बुरे कर्म करने वाले को तो होश होता है मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, लेकिन अहंकारी तो अच्छा कर्म करने वाला होता है, याद रखिए हमेशा। उसका अहंकार बड़ा बारीक होता है और बड़ा गहरा होता है। ये अहंकारी लोग अच्छे कर्म करने वाले ही होते हैं, सबसे ज्यादा होश की उनको जरूरत होती है, सबसे ज्यादा कर्तापन उनके अंदर स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए जब तक इस विज्ञान को इस बारीकी से आप नहीं समझोगे और इसमें इस विज्ञान में आप इस मतलब बुद्धि में जब ये विज्ञान आपकी टिकेगा नहीं बुद्धि में, जब तक आप 24 घंटे कैसे होश में जियोगे? आप हर समय देह करके जियोगे, मैं करते रहोगे, दिखाते रहोगे देखो मैं कैसा आदर्श जीवन पेश कर रहा हूँ। जब आपके अंदर ये है कि मैं कैसा आदर्श जीवन पेश कर रहा हूँ तो आपको होश है कि तेरा अहंकार, तेरे अंदर अहंकार बढ़ रहा है, ये मैं गहरा हो रही है तेरे अंदर। तू यदि विवेक के साथ जीवन जी रहा है तो ये कोई आदर्श पेश करने की जरूरत नहीं है। 8 तेरा प्रभाव लोगों पर होगा, तुझे देखने की जरूरत नहीं है मेरा प्रभाव कितना पड़ा लोगों पर, तूने देखा तो तेरा अहंकार पड़ जाएगा, तेरी देह का अहंकार पक्का हो जाएगा कि मैं देह हूं, यही जाएगा वो। इसीलिए हर वक्त ये बात ध्यान रखनी होती है कि प्रभु कारण करता है। सारा संसार चक्र चला रहे हैं तो कि मेरे कारण चला है, चलेगा उनका संसार? तो इसीलिए वो अपने दोषों की तरफ नजर रखता है, अपने ऊपर बड़ी सख्त नजर होती है उस व्यक्ति की, तब उसको ये शास्त्र के शब्द समझ में आते हैं कि महाजी कह रहे हैं प्रेमी तेरे मन में क्या संकल्प उठते हैं, हर समय कर्म करने के तो संकल्प उठते हैं और कर्म किसी प्लानिंग के अंतर्गत ही तो करते हो जिसमें आपको अपनी भलाई नजर आती है, चाहे सुख के रूप में या अन्य किसी रूप में, उसी के लिए तो कर्म करते हो और हर कर्म का फल द्वंद्व रूप होता है, हर कर्म का फल द्वंद्व रूप होता है। और द्वंद्व उसे कहते हैं जैसे दो फल होते ना, दिन होता है रात होता है, सुख होता है दुख होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, सफलता होती है विफलता होती है, जो कुछ भी होगा द्वंद्व रूप होगा ना। और द्वंद्व उसे कहते हैं जो एक दूसरे का निर्माण करते रहते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते रहते हैं, इसका मतलब होता है द्वंद्व। जो जैसे सुख दुख का निर्माण कर रहा है और सुख दुख को नष्ट भी कर रहा है, दुख सुख का निर्माण कर रहा है और दुख सुख को नष्ट भी कर रहा है, तो एक दूसरे का निर्माण भी कर रहे हैं एक दूसरे को नष्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसी का नाम है अंतर्द्वंद। उस द्वंद्व के अंदर अंतर्द्वंद है, इसीलिए किसी भी फल के अंदर तू वहम में रहता है कि मैं खुश हो जाऊं ये मिल गया मुझे। जैसे कि जन्म किसी को मिल गया तो मौत स्टार्ट हो गई इसकी, जन्म हुई ना मिले तो मौत होगी। तो इसीलिए जहां जन्म है वहां मौत है, जहां स्वास्थ्य है वहां बीमारी है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां अपना है वहां पराया है, जहां मित्र है वहां दुश्मन है, इससे तू कभी मुक्त नहीं होगा, तू कितना ही अच्छा आदमी बन जा। तो तेरा पूरा जीवन हर वस्तु द्वंद्व रूप है, तू किस वहम में फंसा हुआ तू कभी सुखी हो जाएगा, किस वहम में फंसा हुआ तेरे बच्चे कभी सफल हो जाएंगे, तू कभी सफल हो जाएगा, तू जानता ही नहीं सफलता क्या। इसीलिए इस मनुष्य जन्म का जो ये जीवन है देह करके जीवन, इसको पशु जीवन कहा गया। जिस प्रकार पशु को इस बात का कोई होश नहीं है, इस प्रकार उस मनुष्य को भी कोई होश नहीं है। इसलिए सत्पुरुषों की बात बिल्कुल ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो धरती का, वो पशु ही है यदि उसको इस बात का बोध नहीं है। तो ये सारा जगत द्वंद्व रूप है, ये हर चीज जो है वो दुख रूप है, क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है और नाशवान है। ये तो दो बातें कह रहे हैं माजी, सारी प्रकृति परिवर्तनशील और नाशवान है, संपूर्ण प्रकृति। अब आप जब शुद्ध विवेक चैप्टर पढ़ के देखिए समता विलास में, वहां पता लगेगा विवेक किसको, शुद्ध विवेक किसको कहा उन्होंने, इसको कहा शुद्ध विवेक। तो मेरे अंदर ये होश बना हुआ है, विचार करके देखिए कभी ये बात हमारे दिमाग में आई है आज तक? समता विलास कितनी बार पढ़ी होगी, संपूर्ण प्रकृति नाशवान और परिवर्तनशील है, इसलिए ये परम दुख रूप है। इस परम दुख रूप प्रकृति में मैं गोल बना रहा हूं जीवन के, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, मुझे होश ही नहीं कहां जी रहा हूं ईश्वर का होके मैं, क्यों नहीं जी रहा हूं? क्योंकि विवेक नहीं। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहाने नहीं बनाएगा, जिसके अंदर ये विवेक होगा वो बहाने नहीं बनाएगा, वो कहता है मैंने जीना तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, बाकी सारा संसार जो है वो प्रभु के अधीन है, ये बात सत्य है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकता संसार का। लेकिन मेरे अंदर ये हिम्मत भी नहीं है कि सबको छोड़ के एक तरफ बैठ जाऊं, और वो संभव भी नहीं। आप चाह भी लो इस बात के लिए, महर्षि रमण कहते करके देख लो, बैठ के देख लो, बैठ जाओ तो। बहुत से लोग कहते ना मैं तो साहब एक तरफ कोने होकर भगवान का स्मरण करता हूं, उनके बैठ के देख लो, क्योंकि देह मन आपकी जो है प्रारब्ध के अधीन है, और वो अंतर्यामी प्रभु बैठे हुए हैं जो चला रहे हैं देह को, इसलिए जो कर्म करने के लिए देह पैदा हुई है वो तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता ना, इसलिए वो कह रहे हैं इस अज्ञानता की हालत में तू कर्तव्य भाव से कर्म कर। इसलिए गीता ने कहा कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, तुझको कर्म का अधिकार दिया, तेरा कर्म में अधिकार है, लेकिन भूल जा रहे हैं कि दूसरा अधिकार तो छीन लिया उसने। मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं। कर्म करने का अधिकार तो गीता दे रही है, लेकिन फल का अधिकार नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि गीता ने मुझको मोक्ष दिलवाना है, और मैं मेरी निगाह फल में टिकी हुई है। मेरे बच्चे के कितने नंबर आए, बड़ा दुख हो रहा है, इतने कम नंबर आ गए। यदि मैं होश में होता, ना मुझे सुख होता ना मुझे दुख होता, मैं तो ये देखता कि मेरा कर्तव्य जो था मैंने पूरा करा नहीं करा, बस बात खत्म हो गई। अब तेरा मोह बोल रहा है कि कितने अच्छे नंबर आए इसके। तो गीता प्रारंभ में ही कह रही है मां फलेषु कदाचन, फल में कदापि नहीं। इसका मतलब मनुष्य जन्म फल भोगने के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य जन्म फल से मुक्त होने के लिए हुआ है। अब बताइए गीता कौन समझता है? गीता तो ये सिखा रही है, और महर्षि के संतावास भी यही सिखा रही है। वहां साफ साफ लिखा हुआ है कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। मैं त्यागी बनता हूं, करता हूं त्यागी। कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। अब हम सब बैठे हैं, जरा देख लें अपनी तरफ, आईने में अपना अपनी करनी देख लें, कैसा फल से चिपके रहते हैं, फिर भी कहते हैं हम ईश्वर की तरफ चल रहे हैं। ABCD पता नहीं है अभी हमको शास्त्र। तो हमने जो शास्त्र पढ़ते हैं या सुनते भी हैं तो किस लापरवाही से सुनते हैं, और ये अहंकार पा लेते हैं मैं सब समझ गया। ये बिना गहरे मनन के समझ में आ ही नहीं सकते, और वो भी तब जबकि प्रैक्टिकल जीवन आपका गुरु के अनुसार हो, वो भी तब समझ में आए। अब कभी इस बात ने हमको स्ट्राइक किया कि माँ जी किसको त्यागी कर रहे हैं? मुझे केले की सब्जी बहुत पसंद है, केले की सब्जी त्याग दो, मैं तो त्यागी हूं। मैं 3 रोटी खाता था, मैं 2 रोटी खाता हूं, मैं तो त्यागी हूं। मैं तो ऐसे त्याग गिनता हूं। इसको त्याग नहीं कहते हैं, इसको संयम कहते हैं। त्याग तो, त्याग की परिभाषा तो ये है कर्म फल द्वंद का त्याग ही असली त्याग है। अब बताइए जब इस त्याग को मैं जीवन में अपनाता हूं तो भैया मैं किसकी याद करूंगा? जरा विचार करके देखो, मैं किसकी याद करूंगा? 24 घंटे ईश्वर की याद आएगी। फिर जब मैं त्यागी बनूंगा मुझे 24 घंटे ईश्वर की याद आएगी। कर्म करूंगा कर्तव्य बोध से, और त्यागी बनूंगा फल का। अब बताओ किसकी याद करोगे? फिर किस लिए याद करोगे? आएगी या नहीं आएगी प्रभु की याद? तो जब अंतर्यामी प्रभु की याद आएगी इस रूप में तो मन आपका साफ हो चुका होगा, सारे संकल्प सारे द्वंद इसमें से साफ हो जाएंगे, निर्मल मन हो जाएगा। इसके लिए रामायण कह रही है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, रामायण कह रही नहीं कर रही है, लेकिन इस रामायण का ये अर्थ कौन समझता है? कोई समझता है? कभी सुना आपने इस अर्थ को कोई समझता हो? ये कह रही है रामायण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अंतर्यामी ईश्वर है, वो आनंद का सागर है, वहां तो द्वंद नहीं है, इसलिए उसको निर्द्वंद अवस्था कहते हैं। ईश्वर को अद्वैत कहते हैं, जहां दो है ही नहीं। तो वो अमृत इस देह के अंदर मौजूद है, और ये मन ये जहर इस देह के अंदर मौजूद है। तो प्रभु भक्ति अमृत कलश है, वो अमृत प्राप्ति है, अमृत जीवन है, और ये मन करके जो जीवन है आपका ये विषरूप जीवन है। तो अब बताइए अमृत को छोड़कर मैं विष पी रहा हूं, क्यों पी रहा हूं? भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण। अब गुरु मुझको मिला है, परम गुरु जो ईश्वर रूप है, जो खुद कह रहा है कि मैं अंतर्यामी हूं, अंदर निवास कर रहा हूं, वो अमृत है, गुरु अमृत का घड़ा है। तो रात दिन मेरी कोशिश यही होगी कि किसी प्रकार मैं संसार की याद ना कर पाऊं, ईश्वर की याद मेरे अंदर निरंतर बनी रहे, इसलिए वाणी कह रही है उठत बैठत प्रण एको धारी, एक पलक ना विसरे शत्रु मुरारी। देखो वाणी कह रही नहीं कह रही, एक पलक ना विसरे शत्रु मुरारी, क्योंकि उसको होश है बुद्धि में, ये तो जहर है, जितनी देर भी याद आएगी तो जहर में डुबकी लगा रहा हूं। इसलिए ऐसा होश वाला व्यक्ति, ऐसा विवेक वाला व्यक्ति जिंदगी बर्बाद करेगा अपने, कहेगा मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, मोहल्ले वाले हैं, देश वाले हैं, ये तो अज्ञानी है, भ्रम में है, इनके भ्रम के चक्कर में अपना जन्म बर्बाद कर दूं, मैं तो होश में हूं, मैं अपना जन्म कैसे बर्बाद कर सकता हूं, ये अज्ञानी है, ये तो करेंगे, मेरे अंदर ताकत नहीं है मैं इनके अंदर ज्ञान पैदा कर दूं, तो मैं अपना जीवन बचाऊंगा। मेरा जीवन देखकर यदि मेरी देह की मृत्यु हो भी गई, ये याद करेंगे कि मेरे पिता का जीवन बड़ा अच्छा था, मोहल्ले वाले भी याद करेंगे वो बड़े अच्छे थे, देवता समान थे, तेरी याद करके उनके अंदर सुधार आएगा, तेरे जीते जी सुधार नहीं आया लेकिन याद करने के बाद सुधरेंगे वो। देखो ना मोहम्मद साहब को नाम लेके कितने सुधर जाते हैं, ईसा मसीह का नाम लेके कितने सुधर जाते हैं, बैठे हुए हैं क्या वो? मैं बैठे हुए गारंटी लेता हूं मैं सुधार के छोड़ूंगा लोगों को, तेरी करनी ऑटोमेटिकली लोगों को सुधारेगी, तू नहीं सुधारेगा, तू यदि सुधारने चला तेरा अहंकार बढ़ जाएगा, तेरा सुधार चौपट हो जाएगा, वो सुधर नहीं पाएंगे। इसीलिए ये जितना भी विज्ञान है बड़ा बारीक विज्ञान है, सही सही इसका विश्लेषण किया जाए, सही सही इसको जैसा लिखा है समतावलास में वैसा समझा जाए, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, सारे वहम निकल जाएंगे, खुद देखोगे कि हर वक्त मन करता है कि ईश्वर की याद करने को, संसार के अंदर कोई रस नजर नहीं आता, तब पता लगता है कि सार ईश्वर में है, संसार निस्सार है, तो जीवन की सार सत्स्वरूप की तलाश है, आत्मा की तलाश है, वहां जाके समझ में आता है जगतगुरु शंकराचार्य की परिभाषा, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इत्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है, क्योंकि ईश्वर जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा जिसको कह रहे हैं, आत्मा का मतलब ही होता है सेल्फ, मैं स्वयं, मैं वो नहीं हूं जिसको मन परेशान कर रहा है, मैं वो हूं जिसके कमांड में सारा ब्रह्मांड चल रहा है, इसी को बंधन से मुक्ति कहते हैं, मैं सीमित हूं, जब तक सीमित हूं तब तक दुख के बंधन में हूं, जब असीमित हूं तो दुख से मुक्त हूं, तो गोल कहां खड़ा हुआ है देखो जरा, और मैं करनी देखूं मैंने कैसी कर रहा हूं, तब पता लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा ये मार्ग लंबा है लेकिन श्योर मार्ग है, और इस जन्म में मान लिया 10 वर्ष भी मेरे बचे हैं, 10 वर्ष में यदि इस विवेक के साथ बिताता हूं तब 10 वर्ष मेरे मन के अंदर ये सतोगुणी संस्कार, ये ईश्वर वाले संस्कार पैदा कर देते हैं, मन लेके तो मैं यही जाता हूं नेक्स्ट शरीर में, तो नए शरीर में मुझे कम मेहनत करनी पड़ती है, मौत मेरी है नहीं, तो इसलिए ये सोचूं अरे बड़ा लंबा टाइम है कैसे करूंगा, ये तो अज्ञानता की बात है, लाइफ तेरी कंटिन्यूअस है भाई, तू जीव है, ईश्वर तेरे संग है, तो इसीलिए तू हर कर्म वो कर जिससे तेरा ईश्वर खुश हो, तो इसीलिए गुरु की जो बात है उसको मानकर जब चलता हूं ईमानदारी से, दुनिया से डरता नहीं मैं कि जो होगा प्रारब्ध के अधीन होगा, ना मेरे बच्चे बर्बाद होंगे ना संसार बर्बाद होने वाला है, सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है, उसके अनुसार सबको सुख मिलेगा दुख मिलेगा, कर्म करने को मिलेंगे नहीं, और जो फल होगा वो भी प्रारब्ध के अधीन होगा, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने गुरु की बात मानकर उसके अंतर्गत दुनिया देखकर, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, और मैंने फिर क्या करना है, आप अकर्ता हो रहो यही सार है क्या, तो जब इस तरह से मैं सोचता हूं इस तरह से करता हूं तो एक दिन मैं वास्तव में अकर्ता हो जाता हूं, क्योंकि मुझको बोध हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर ही करता है मैं कभी तीन काल करता था ही नहीं। उस हालत का नाम ही गहरी समाधि है। जब तू करता ही नहीं रहा तेरी समाधि टूटेगी क्यों? फिर मन में संकल्प तो कर्म के कारण उठता है ना, जब कर्तापन ही खत्म हो गया संकल्प कहां उठेगा मन के अंदर, उसको कहते हैं निर्मल मन। तो उस समय ये जीव खुद ईश्वर रूप हो जाता है या ईश्वर ही हो जाता है। इसीलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी इस मनुष्य जन्म की सार है सत्स्वरूप की तलाश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम्।